पृष्ठ संख्या 6, समाज सेवाएं, सोशल सर्विसेज। किसी सेवा को सामाजिक कहा जाता है यदि इसका लक्ष्य वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्यकलाप द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना है। यद्यपि अनेक आवश्यकताओं की साधारणतया संतुष्टि की जा सकती है, समाज सेवा का मूल व्यक्ति के बारे में चिंता है। समाज सेवा के कार्य व्यक्तियों अथवा विशिष्ट समूहों द्वारा स्वयमेव किए जा सकते हैं। ऐसे अनौपचारिक समागमों ने साधारणतया न्यूनाधिक अस्थायी कार्यों सहित संगठित संरचना का रूप धारण किया है। अतएव समाज सेवाओं को मानव कल्याण को बढ़ावा देने हेतु संगठित लोकोपकारी कार्यों के रूप में विचरित किया जाता है। इसका उद्देश्य शेष व्यक्तियों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण में वर्तमान शक्तियों अथवा वैयक्तिक कारणों के कारण अपनी समर्थता का पूर्ण विकास करने में असमर्थ है की सहायता करना है। व्यावसायिक कोर्स एवं सेवा के रूप में समाज सेवा का जन्म अपने साथियों की सहायता करने के शताब्दियों पुराने मानवीय प्रयासों से हुआ है। समाज सेवा की विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से व्याख्या की जाती है। यूरोपीय देशों में इसे केवल राहत सेवाओं तक सीमित रखा गया है, जबकि ग्रेट अथवा कॉमनवेल्थ देशों में इसका व्यापक अर्थ लिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, औद्योगिक विकास के संदर्भ में कल्याण सेवाएं तथा प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने हेतु राहत उपाय सम्मिलित किए जाते हैं। यूके में समाज सेवाएं कही जाने वाले गतिविधियों में सम्मिलित हैं। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, वृद्ध एवं अशक्त लोगों की देखभाल तथा बाल कल्याण। भारत में समाज सेवाओं का अर्थ उन गतिविधियों से लिया जाता है जिनका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, एवं इनमें शिक्षा, जन कल्याण गतिविधियों, सामाजिक सुरक्षा उपाय, सामाजिक बीमा एवं सामाजिक सहायता आदि सम्मिलित हैं। यह इसकी अति व्यापक व्याख्या है। इसमें सामाजिक सुरक्षा उपायों, जो समाज कल्याण सेवाओं का भाग है, को भी समाज सेवाओं में सम्मिलित कर लिया गया है। भारतीय संदर्भ में समाज सेवाओं की उपयुक्ततम परिभाषा होगी वे सेवाएं जिनकी सामान्य जनसंख्या को अति विशाल स्तर पर आवश्यकता है। ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि की सेवाएं सम्मिलित हैं। इनका लक्ष्य देश के मानव साधनों का विकास करना है। समाज सेवाओं के इन प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पृष्ठ संख्या 7, नंबर 1, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा मानव विकास का केंद्र बिंदु है। ये यथेष्ट आर्थिक अथवा सामाजिक विकास हेतु किसी भी जीवनक्षम परियोजना का केंद्रीय भाग है। पूर्ण साक्षरता से अन्य कई सामाजिक समस्याओं यथा जन्म की ऊंची दर, स्वास्थ्य की देखभाल का अभाव, अज्ञानता एवं निर्धनता के समाधान में सहायता मिलती है। भारत ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक पग उठाए हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को स्कूल जाने वाली आयु के सभी बच्चों को शिक्षा, सार्वभौमिक सफलता एवं सार्वभौमिक भागीदारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से सज्जित किया गया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं एवं समाज के हीन वर्गों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। यूनेस्को ने भारत के प्रयासों को इसे 2 बार लगातार साक्षरता पुरस्कार देकर पिछले वर्ष केरल तथा इस वर्ष पश्चिम बंगाल की सराहना की। भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की निकट भविष्य में प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने पर ही संभव हो सकती है। भूतकाल में शिक्षा व्यक्तिगत दानवीरों, धार्मिक संस्थाओं एवं स्वैच्छिक एजेंसियों का दायित्व तो होता था। राज्य ने तो उनके प्रयासों के पूरक रूप में बहुत बाद में कदम उठा रखा। आज भी निजी सेक्टर द्वारा आरंभ अथवा समर्थित शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या सरकार द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित संस्थाओं से अधिक है। उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयी पर प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुपात से अधिक निवेश है। इस असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए। भारतीय जनता अभी भी निरक्षरता में डूबी हुई है। पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य साक्षरता 1981 में 46.9 एवं 24.8% क्रमशः थी। अतः उनको साक्षर बनाने के प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए। भारत सरकार ने 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया, जिनमें 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य, जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में एक हैं, की प्राप्ति, सभी स्तरों पर शिक्षा की प्रक्रिया एवं उसकी विषय वस्तु का पुनर्भिमुखीकरण, शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, शिक्षा को सामाजिक बदलाव, आधुनिकीकरण एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारे राष्ट्र पर निरक्षरता को समाप्त करने, विशेषतया 15 से 35 वर्ष की आयु वाले वर्ग का दायित्व तो डाला गया है। इस नीति में यह लक्ष्य भी रखा गया है कि साक्षरता के कार्यक्रम को शिक्षार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं से मेल खाती प्रायोगिक सूचना एवं कुशलताओं के साथ संयुक्त करके अर्थपूर्ण बनाया जाए। नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों, पिछड़ी जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों, महिलाओं सहित को शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए विभिन्न सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई। आशा है कि इन उद्देश्यों, यद्यपि ये महत्वाकांक्षी दिखाई देते हैं, को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामुदायिक समर्थन एवं सशक्त राजनीतिक इच्छा के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। पृष्ठ संख्या 8, नंबर 2, स्वास्थ्य हेल्थ। हमारे देश में जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य स्थिति सदा गंभीर विषय रही है। प्राचीन काल में भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा काफी उन्नत विज्ञान थे। चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाएं दानशील संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती थी। सरकार की भूमिका इस दिशा में स्वतंत्रता पूर्व काल में उसके दायित्वों के अनुरूप नहीं रही है। भारतीय संविधान में निर्धनता, अज्ञानता एवं कुस्वास्थ्य को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पोषण एवं लोगों के जीवन स्तर तथा जन स्वास्थ्य एवं श्रमिकों की स्थिति को उन्नत करने का प्रयास करे, विशेष तौर पर बच्चों को स्वस्थ ढंग से विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त हों। तदनुसार क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में रूपरेखा की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें राज्य अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत संरचना, चिकित्सीय शिक्षा, शोध आदि की सुविधाओं का विकास कर सके। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता उपरांत स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है। प्लेग अब कोई समस्या नहीं रही। मलेरिया, हैजा तथा अन्य रोगों के कारण मृत्यु दर पर काबू पा लिया गया है। मृत्यु दर 1910 से 1911 में 42.6 से घटकर 1988 में 10.8 हो गई है तथा जीवन रेखा 32.7 से बढ़कर 60 वर्ष पहुंच गई है। जन्म दर में 1991 में 1.8% की गिरावट आई है। इस प्रभावी प्रगति के बावजूद भी अतिसार एवं अन्य संक्रमण रोगों, विशेषतया शिशुओं एवं बच्चों में का प्रयोग, पीने के स्वच्छ जल का अभाव, गंदगी, दूषित पर्यावरण, निर्धनता, अज्ञानता, रोगों एवं मृत्यु की ऊंची दरों का महत्वपूर्ण कारण है। सन 2000 तक भारत सबके लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने एवं जनसंख्या स्थितिकरण के लिए वचनबद्ध है। तदर्थ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, रोग प्रतिरक्षण प्रोग्रामों द्वारा संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, समुचित स्वच्छता अभियान एवं छोटा परिवार प्रचार द्वारा परिवार कल्याण, जन्म नियंत्रण तकनीकों समेकित बाल विकास सेवाओं की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं में जनसंख्या नियंत्रण की समस्या सर्वाधिक गंभीर है। भावी परिवारों के लिए हम दो हमारे दो का नारा था, परंतु अब हम दो हमारा एक प्रतिमान स्थापित किया जाना होगा। परंतु निरक्षर एवं अंधविश्वासी जनता को छोटे परिवार का नियम अपनाने के लिए प्रेरित करना कठिन कार्य है। निरक्षरता तथा जनसंख्या वृद्धि के मध्य सीधा संबंध है, अतएव राष्ट्र को जनसंख्या विस्फोट की समस्या को हल करने के लिए निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में आमुख करना होगा। निःसंदेह बच्चों में कुपोषण घट गया है, परंतु पोषण की राष्ट्रीय संस्था हैदराबाद के अनुसार दैनिक भोजन में अधिक सुधार की अभी भी गुंजाइश है। दुर्भाग्यवश हम वित्तीय संसाधनों की अल्पता एवं विशाल जनसंख्या के कारण विकसित देशों में लोगों को प्राप्त चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क चिकित्सीय सहायता आदि के रूप में प्रदान नहीं कर सकते। तदापि शासकीय एवं स्वैच्छिक एजेंसियां तथा निजी संगठन जन स्वास्थ्य को सुधारने एवं तत्संबंधी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु पूर्ण प्रयत्नशील हैं। पृष्ठ संख्या 9, नंबर 3, आवास। आवास मूलभूत मानव अधिकार एवं आवश्यकता है। सभी के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था विश्वव्यापी समस्या है। अति विकसित देश अमेरिका एवं रूस भी इस समस्या से ग्रस्त हैं। इस समृद्ध देशों में कुछ लोग घेटों में रहने के लिए विवश हैं, क्योंकि अच्छा मकान उनके साधनों से बाहर है। तीसरे संसार के देशों में स्थिति अत्यधिक भयावह है। भारत में जनसंख्या का 2/3 गरीबी रेखा से नीचे रहता है तथा 10 लाख से अधिक लोगों के सिर पर छत नहीं है। 1951 में 90 लाख यूनिटों से बढ़कर भारत में आवास का अभाव 1985 में 250 लाख तक पहुंच गया। 1971 में 100.4 लाख इकाइयों को अनुपयोगी आवास पाया गया, जिनका उन व्यक्तियों द्वारा जो अन्य उपयुक्त आवास लेने की स्थिति में नहीं है प्रयोग किया जाता है। दूसरा निराशाजनक पहलू अमानवीय दशाओं में गंदी बस्तियों की अवस्थिति है, जहां पीने के पानी अथवा शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है एवं अन्य आधारभूत सुविधा भी लगभग उपलब्ध नहीं है। कम लागत वाले मकानों जो हमारे आर्थिक पर्यावरण के अनुकूल हैं के निर्माण किए जाने की भी आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1987 का वर्ष बेघरों के लिए आश्रम का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इसके माध्यम से राष्ट्रों को चेतावनी दी गई थी कि इस दिशा में कोई निष्क्रियता सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। भारत सरकार का 1991 तक राष्ट्रीय आवास नीति का निर्माण करने तथा इसे ओजस्विता के साथ लागू करने का प्रस्ताव है, विशेषतः निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लिए। आवास के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं में केंद्रीय सरकार द्वारा मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए अभिकरणों की स्थापना की सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार ने राज्य स्तर पर आवास बोर्डों की स्थापना पर बल दिया। केंद्रीय सरकार ने 1971 में हुडको आवास एवं नगरीय विकास निगम की स्थापना की। हुडको आवास एवं मानव बस्तियों के क्षेत्र में राष्ट्र की प्रमुख तकनीकी वित्तीय संस्था है। मार्च 1991 तक इसने 30.8 लाख परिवारों को आश्रय प्रदान किया है। राज्य आवास बोर्ड आवास सहकारी संस्थाएं एवं भवन निर्माण समितियां आवास की समस्या के समाधान में योगदान दे रही हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, जिनका स्वामित्व रिजर्व बैंक के पास है, आवास निर्माण गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देगा, विशेषतया स्वैच्छिक जमा या स्कीम के परिप्रेक्ष्य में, जिसे व्यक्तियों ने अघोषित आय उसके स्रोत को बतलाए बिना कुल 40% भाग जमा करके आरंभ किया है। यह राशि एक विशेष निधि में जमा होगी, जिसका प्रयोग निर्धन व्यक्तियों के लिए कम लागत वाले मकानों के निर्माण तथा गंदी बस्तियों को समाप्त करने के कार्य में किया जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार पर्याप्त निवेश तथा प्रयासों की व्यवस्था के बावजूद भी आवास समस्या भयावह रूप धारण किए है, तथा अन्य निम्न आय वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगरों के भौतिक नियोजन में गंभीर परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है। इस शताब्दी के अंत तक 410 लाख मकानों की कमी होगी। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आवास केवल मात्र सिर के ऊपर छत नहीं है। इसका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, परिवार कल्याण, उच्च उत्पादक दक्षता एवं सौंदर्य से सीधा संबंध है, क्योंकि लोग नगरों की ओर प्रयास कर रहे हैं और नगरीय सेवाओं की व्यवस्था की कोई भी मात्रा पर्याप्त दिखाई नहीं दे रही है। अतः अब नगरों की ओर प्रवास दर को कम करना आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब ग्रामीण औद्योगिकरण एवं आवास के लिए उचित पर्यावरण स्थापित किए जाएं। लोगों को स्थान परिवर्तन कराने के स्थान पर, जहां लोग रह सकते हैं, उन स्थानों पर ही आवश्यक आधारभूत ढांचों को प्रतिस्थापित किया जाए। सबके लिए आवास अवास्तविक लक्ष्य दिखाई देता है, तदपि जो प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं, उनको समझने एवं तेज करने की आवश्यकता है, ताकि संभावित कम से कम समय में लक्ष्य के निकट तक पहुंचा जा सके। पृष्ठ संख्या 10, समाज सेवाओं तथा समाज कल्याण में अंतर। पिछले पृष्ठों में समाज सेवाओं तथा समाज कल्याण की अवधारणाओं तथा इनके विषय क्षेत्र के विश्लेषण से इन दोनों शब्दों के मध्य अंतर स्पष्ट हो जाता है, जो संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार हैं। क्रम एक, समाज सेवाएं वे सेवा हैं जो सामान्य जनसंख्या के लिए होती हैं। ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि की सेवाएं सम्मिलित हैं। ये सेवा सब व्यक्तियों को उनके आर्थिक पद के भेदभाव बिना प्राप्त होती हैं। उनका लक्ष्य देश के मानव संसाधनों को विकसित करना है। दूसरी ओर, समाज कल्याण सेवाएं वे सेवा हैं जिनका समाज के हीन वर्गों की आवश्यकता होती है, जिनमें विकलांगों तथा परंपरिक कम सौभाग्यशाली वर्गों यथा बच्चों, महिलाओं एवं पिछड़ों वर्गों के लिए सेवाएं सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में, ये सेवा ऐसे व्यक्तियों एवं वर्गों के लिए है जो सामान्य जनसंख्या को उपलब्ध सेवाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। क्रम दो, समाज सेवाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी स्थापित सेवाओं का बोध कराती हैं, जबकि कल्याणकारी सेवाएं समुदाय के उन वर्गों के लिए विशेषतया होती हैं जिन्हें विशेष सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता है, जैसे अंधे, बहरे, बेरोजगार तथा अपराधी। क्रम तीन, समाज सेवाएं सामान्य रूप से मानव संसाधनों के बेहतर बनाने की ओर निवेश हैं, जबकि कल्याणकारी सेवाएं कम सौभाग्यशाली अथवा विकलांग वर्गों को इस योग्य बनाने का प्रयत्न है जिससे वे सामान्य समुदाय के स्तर के निकट पहुंच सकें। क्रम चार, कल्याणकारी सेवाओं अधिकांशतया परिवार एवं समुदाय आमुखी होती हैं, जो समाज सेवा नहीं होती। क्रम पाँच, पूर्ण रूप से विकसित समाज सेवाओं वाले राज्य में भी विविध शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा सामाजिक असमर्थताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कल्याणकारी सेवाओं की सदैव आवश्यकता होती है। क्रम छः, सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य मानव सुख की वृद्धि करना है, जबकि कल्याणकारी सेवाओं का उद्देश्य समुदाय के कमजोर वर्गों को उस स्तर तक पहुंचाना है जिससे वे भी सामाजिक सेवाओं का लाभ उठा सकें। कल्याणकारी सेवाएं समाज सेवाओं का अंगभूत परंतु भिन्न अंग है। इस प्रकार दोनों सेवाएं एक दूसरे के पूरक तथा अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी तथा अन्य बाधाओं के परिणाम स्वरूप समस्याओं से ग्रस्त समाज के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों आदि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों, मानसिक रूप से मंद वर्गों को अपने उत्थान के लिए समाज की सेवा एवं देखभाल की आवश्यकता होती है, ताकि समाज सर्वांगीण रूप से अपने स्तर को उन्नत कर सके। समाज के कार्य, सोशल वर्क। भूतकाल में विवादग्रस्त, अभावग्रस्त एवं निराश्रित व्यक्तियों की धर्म प्रेरित व्यक्तियों द्वारा सहायता की जाती थी। धर्म इनके मानववाद, मानवीय, परोपकारी, प्रजातंत्री विचारधारा, नागरिक समानता, मानव व्यक्तित्व के प्रति समान, निःशक्तों, बेरोजगारों, भावनात्मक रूप से परेशान तथा अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए मोक्ष की आशा पुरस्कार के रूप में दिलाता था। कालांतर में व्यक्तियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दानशील कार्य को समाज कार्य कहा जाने लगा। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से समाज कार्य को जरूरतमंदों को स्वैच्छिक सहायता एवं दान से संबद्ध किया जाता था। परोपकारी कार्य को समाज कार्य तथा इसके कार्मिकों को सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता था। अतएव समाज कार्य भौतिक न्यूनताओं, शारीरिक पंगुता, मानसिक अस्वस्थता अथवा भावनात्मक उत्तेजना से पीड़ित जरूरतमंदों की सहायता के अर्थ में समझा जा सकता है। समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदायों की सहायता करना है, ताकि वे अपने वैयक्तिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकें। दूसरे शब्दों में समाज कार्य व्यक्तियों की अकेले तौर पर एवं वर्गों की सामाजिक क्रियाशीलता को ऐसी गतिविधियों द्वारा जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का बोध कराने वाले सामाजिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं, बढ़ाने का प्रयास करता है। इन गतिविधियों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। क्षतिग्रस्त सामर्थ्य को ठीक करना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक संसाधनों की व्यवस्था एवं सामाजिक अकर्मण्यता की रोकथाम। समाज कार्य की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह एक कला, विज्ञान एवं एक व्यवसाय है जो लोगों के वैयक्तिक, समूह एवं सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। समाज कार्य न केवल समस्याओं के समाधान में लोगों की सहायता करता है, अपितु समस्याओं को रोकने तथा दैनिक जीवन को समृद्ध बनाने में भी सहायता करता है। यह कला इसलिए है कि लोगों को समझने एवं उन्हें अपनी सहायता स्वयं करने में सहायता देने के लिए कौशल की आवश्यकता है। यह विज्ञान इस कारण है कि यह तथ्यों को जानने तथा सिद्धांतों एवं प्रभावी अवधारणाओं को विकसित करने में वस्तुनिष्ठ होने का प्रयत्न करता है। यह एक व्यवसाय है क्योंकि इसमें व्यवसाय के तत्व समाहित हैं। समाजकार तीन मूलभूत विधियों का प्रयोग करता है, व्यक्तिगत कार्य विधि, समूह कार्य विधि एवं सामुदायिक संगठन विधि। व्यक्तिगत कार्य विधि में लोगों की समस्याओं को समझने के लिए व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संपर्क किया जाता है। समूह कार्य में पीड़ित व्यक्तियों के साथ सामाजिक क्रियाकलापों में वांछित परिवर्तन लाने हेतु समूह को माध्यम बनाया जाता है। सामुदायिक संगठन के अंतर्गत सामाजिक लोगों को जानने एवं हल करने के लिए अंतः समूह समागम का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों विधियों का प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामुदायिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ संख्या 12, समाज कार्य व्यवसाय के रूप में। सेवा के रूप में समाज कार्य अति प्राचीन है, परंतु व्यवसाय के रूप में अति नवीन। समाज कार्य व्यवसाय व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों की सामाजिक समस्याओं के समाधान में कला एवं विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान एवं तकनीकों का प्रयोग करता है। समाज कार्य, जो कभी निर्धनों को सुगम सहायता समझा जाता था, अब अपनी विधि एवं वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक ढंग से कलात्मक प्रशिक्षण है, जो समाज के अनेक क्षेत्रों में समस्याओं के बारे में उपचारिक कार्यवाही करता है। यह आर्थिक अथवा भावनात्मक परेशानी से पीड़ित परिवारों की सहायता करता है। समाज कार्य व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक विपत्ति को वैज्ञानिक विधियों द्वारा दूर करने की व्यावसायिक सेवा है। निश्चित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता दूसरों की अपनी सहायता स्वयं करने में सहायता करता है और लोगों की सहायता करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह इसका पुरस्कार है। व्यक्ति जिसका लोगों से स्नेह है और जो उनके साथ तथा उनके लिए कार्य करने में रुचि रखता है, समाज कार्य को आजीविका के रूप में विचरित कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता में सहनशीलता एवं नमनीयता तथा विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ चलने तथा उनके बारे में कोई निर्णय किए जाने बिना उनके कार्य करने के गुण होने चाहिए। समाज कार्य से प्राप्त आंतरिक संतुष्टि के अतिरिक्त इस व्यवसाय से अन्य पुरस्कार भी हैं। सुयोग्य सामाजिक कार्यकर्ता को जन सहायता, परिवार कल्याण, बाल कल्याण, चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, सामुदायिक नियोजन एवं संगठन, वृद्धों के लिए सेवाओं, राज्य एवं स्वैच्छिक संगठनों एवं निजी संस्थानों द्वारा परोपकारी सेवाओं, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रशासन के कार्यक्रमों में रोजगार प्राप्त हो सकता है। समाज कार्य के प्रथम शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका में 1898 में न्यूयॉर्क चैरिटी संगठन समाज द्वारा ग्रीष्मकालीन संस्थान के रूप में किया गया था, जो 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय का न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क बन गया। तदुपरांत अमेरिका, कनाडा एवं अन्य देशों में स्कूल ऑफ सोशल वर्क की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अमेरिका एवं कनाडा में जहां समाज कार्य शिक्षा विकास के उच्च शिखर तक पहुंच गई है, समाज कार्य शिक्षा को विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर व्यावसायिक विषय के रूप में स्थान दिया गया है, जिसका 2 वर्षीय शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लेने पर स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर दी जाती है। कुछ स्कूलों में डॉक्टर की उपाधि हेतु उच्च पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। संसार के दूसरे भागों में समाज कार्य स्कूलों की स्थापना विश्वविद्यालयों के अंदर अथवा उनसे संबद्ध रूप में अथवा सरकार धार्मिक अथवा धर्मनिरपेक्षीय तत्वाधानों में स्वतंत्र शैक्षिक संस्थाओं के रूप में की जा सकती है। एशिया तथा अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के कुछ भागों में समाज कार्य के विश्वविद्यालयी मॉडल को अधिक मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकार किया कि यदि समाज कल्याण नीति को प्रभावी समाज सेवाओं का रूप दिया जाना है तो तकनीकी सहायता एवं अन्य साधनों द्वारा समाज कार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु पग उठाए जाने चाहिए। तदनुसार इससे अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप, परामर्शदात्री सेवाओं, क्षेत्रीय गोष्ठियों एवं अन्य विभिन्न प्रकार के विशिष्ट अध्ययनों में एवं प्रशिक्षण परियोजनाओं को आरंभ किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क एवं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क्स सामाजिक कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय संघों में संबद्ध कार्यकर्ताओं की परस्पर मुलाकात कराती है। प्रत्येक संगठन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा परामर्शदाता का पद दिया गया है। पृष्ठ संख्या 13। भारत में सर दोरबजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसे अब सामाजिक विज्ञान का टाटा संस्थान कहा जाता है, 1936 में स्थापित प्रथम संस्थान था। तदुपरांत समाज कार्य में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनेक संस्थाएं, स्कूलों, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय विभागों, संस्थाओं एवं समाज कार्य की फैकल्टियों के रूप में स्थापित हो गई है, जिनकी संख्या 50 से अधिक है। परंतु इनमें अनेक न्यूनताएं हैं। अधिकांश स्कूल प्रशासकीय नौकरियों के लिए परास्नातक तैयार करते हैं, न कि महत्वपूर्ण समाज कार्य भूमिकाओं के लिए। उनका दिया गया प्रशिक्षण एवं शिक्षा वास्तविक समाज कार्य की ओर उन्मुख नहीं होता। ये अमेरिकन मॉडल से अधिक प्रभावित हैं। यद्यपि हाल ही में समाज कार्य को देश की आवश्यकताओं एवं इसके संसाधनों के साथ संदर्भित बनाने एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं समस्याओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को विकसित करने के प्रयास किए गए हैं। प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की नौकरियों के अधिक अवसर प्राप्त नहीं हैं। बावजूद इस तथ्य के कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने यह शर्त लगा रखी है कि अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक अभिकरणों को प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही भर्ती करना है, इन्हें निरीक्षक पदों पर फैक्ट्री निरीक्षक एवं श्रम कल्याण अधिकारी के रूप में लगाया जाता है, जिन पदों पर ज्ञान, कौशल एवं वृत्तियां, दृष्टिकोण सामाजिक कार्यकर्ताओं के ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते। समाज कल्याण भारतीय परिषद प्रशिक्षण सामाजिक कार्यकर्ताओं की भारतीय समिति एवं सामाजिक कार्य के स्कूलों की समिति भारत में इस व्यवसाय अथवा सामाजिक कार्य की प्रशिक्षण संस्थाओं पर ऐसा नियंत्रण नहीं रखते जैसा कानून एवं औषध के व्यवसायों में इस प्रकार की समितियां रखती हैं। अंतिम इस व्यवसाय को आवश्यक लोक मान्यता अथवा मान प्राप्त नहीं है। राधा कमल मुखर्जी ने उपयुक्त ही कहा है, समाज कार्य भारत में अल्पवयस्क तदपि मानहीन एवं धन्यवाद रहित व्यवसाय है। निःसंदेह इसे विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं में व्यावसायिक कौशल एवं समाज कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रविधियां सीखने हेतु स्थान दिया गया है, परंतु इसे न तो सामाजिक मान्यता मिली है और न ही इसने समाज कार्य एवं कल्याण के दर्शन में आधारित आचार संहिता को विकसित किया है। अतः यह विवादास्पद है कि क्या भारत में समाज कार्य को व्यवसाय की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ एक इसे व्यवसाय अथवा धंधा न कहकर एक गतिशील गतिविधि कहना चाहेंगे, जो समाज में चाहे इसका विकास स्तर कुछ भी हो, व्यक्ति परिवार एवं समूह के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक कल्याण की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक अथवा निजी प्रयास द्वारा सामाजिक नीति के क्रियान्वयन में की जाती है। कुछ कहना चाहेंगे, समाज कार्य मानव कष्टों को दूर करने की दिशा में संगठित प्रयासों पर बल देते हुए एक नया व्यवसाय होने का दावा कर सकता है, परंतु यह स्वयं को मानव हृदय में स्थापित मूल भावनाओं से दूर नहीं कर सकता। जो इस कार्य को करते हैं वे इसे आय का साधन नहीं बना सकते। अतः जो कोई सहायता उनके द्वारा की जाती है वह केवल स्नेह एवं अवैतनिक सेवा की वस्तु है, यही सर्वोत्तम समाज सेवा है। परंतु दूसरी ओर विद्वान वर्ग कहेगा कि समाज कार्य को व्यवसाय का पद मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें वे सब अनिवार्य तत्व विद्यमान हैं जो किसी व्यवसाय में होते हैं। समाज कार्य एक नया व्यवसाय है, यद्यपि भारतीय समाज इसे ऐसा हिचकिचाहट के साथ स्वीकार करता है। संक्षेप में, समाज कार्य को एक ऐसा व्यवसाय कहा जा सकता है जो अभी निर्माण के दौर से गुजर रहा है तथा जिले कालांतर में उचित मान्यता एवं स्वीकृत प्राप्त हो जाएगी। विशेषता क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन समाज कल्याण कार्यक्रमों के विस्तार एवं व्यापकता के दृष्टिगत जब इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। पृष्ठ संख्या 14। समाज कार्य एवं समाज कल्याण में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर। समाज कार्य एवं समाज कल्याण को बहुधा समान अर्थों में प्रयुक्त समझा जाता है, जो भ्रांति को जन्म देता है। वास्तविक रूप से समाज कल्याण का अर्थ विस्तृत है, जिसमें समाज कार्य एवं अन्य संबंधित कार्यक्रम एवं गतिविधियां समाहित हैं। समाज कार्य तथा समाज कल्याण के मध्य अंतर के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। क्रम एक, समाज कार्य का पूर्वभिमुखीकरण समाज कल्याण के पूर्वभिमुखीकरण के अति भिन्न है। समाज कार्य व्यावसायिक क्रिया है तथा सामाजिक कार्यकर्ता एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे सामाजिक कल्याण अभिकरणों में अधिकांश स्वैच्छिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं हैं, परंतु समाज कार्य अब अधिक औपचारिकृत बनता जा रहा है एवं यह एक व्यवसाय के रूप में उभर आया है। समाज कल्याण की समग्रता के एक विशेषीकृत आधुनिक खंड के रूप में। क्रम दो, सामाजिक कार्यकर्ता अपने संकटग्रस्त मुवक्किल की स्वायत्तता एवं वैयक्तिक योग्यता का मान करता है तथा उसके ऊपर कोई भी वस्तु बलपूर्वक नहीं थोपता। वह वस्तु चाहे कितनी अच्छी अथवा लाभकारी क्यों ना हो। दूसरी ओर समाज कल्याण कार्यकर्ता जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि अमुक प्रोग्राम उसके मुवक्किल के लिए उपयोगी है, अनुभव करता है कि इस प्रोग्राम को उसके लाभ के लिए क्रियान्वित किया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 15। क्रम 3, सामाजिक कार्यकर्ता को भौतिक सहायता अथवा परामर्श देने की दिशा में कोई पहल करने से पूर्व अपने मुवक्किल व्यक्ति परिवार वर्ग समुदाय के पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सामाजिक एजेंसी के पास ऐसा मुवक्किल पहुंचने के उपरांत समाज कार्य व्यवसाय के सभी संसाधन मुवक्किल की सहायता करने में जुट जाते हैं ताकि वह स्वयं अपनी सहायता कर सके। परंतु समाज कल्याण कार्यकर्ता के सम्मुख ऐसी कोई बाधाएं नहीं हैं। हमारे देश में सामाजिक कार्यकर्ता जरूरतमंद मुवक्किलों के पास जाते हैं तथा समाज के संस्थागत आकार अथवा व्यक्तिगत मनोवृत्तियों अथवा दोनों में आवश्यक परिवर्तन लाने हेतु उनके सहयोग को प्राप्त करते हैं। क्रम 4, प्राविधिक तौर पर समाज कार्य एक प्रक्रिया है, स्वयं लक्ष्य नहीं, परंतु समाज कल्याण समाज कार्य का अंतिम परिणाम है। पुनः हम अपने देश में समाज कार्य के क्रियागत पक्ष पर अधिक बल देते हैं और इस प्रकार समाज कार्य एवं समाज कल्याण में भ्रांति उत्पन्न कर इन दोनों शब्दों को समानार्थक बना देते हैं। सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। सामाजिक सुधार भी कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक सुधार एवं सामाजिक कल्याण दोनों का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन को अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाना है। पूर्वोक्त समाज के वर्गों को पीड़ित करने वाली सामाजिक कुरीतियों को दूर करके एवं उपरोक्त आवश्यक सुविधाएं एवं लाभ प्रदान कर सके। सामाजिक कुरीतियां एवं बुराइयां विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों तथा विचारहीन धार्मिक अनुष्ठानों में दृष्टिगोचर होती है, जिसका कारण है उचित शिक्षा एवं तार्किक विचारधारा का प्रभाव, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना, उनका निम्न पद एवं हीनता संपत्ति के अधिकार से उनको अलग रखना, कम आयु में उनका विवाह, विधवा विवाह पर पाबंदी, बेमेल विवाह, वृद्ध की नवयुवति से शादी, बच्चों की बलि, देवी देवताओं को प्रसन्न करने एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु असमानताएं, सामाजिक अन्याय, जाति प्रथा, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों एवं पिछड़ी जातियों का शोषण, अस्पृश्यता का परिचलन, नशीले पदार्थों का सेवन आदि। इतिहास के विभिन्न चरणों में सामाजिक सुधारकों ने मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों एवं विश्वासों में जन शिक्षा, अहिंसात्मक साधनों तथा तर्क द्वारा आवश्यक परिवर्तन लाकर विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को कम करने, यद्यपि पूर्णतया समाप्त करने का नहीं, का बीड़ा अपने ऊपर लिया। हाल ही में हिंसा एवं विरोध भी सामाजिक सुधार लाने के साधन रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। सामाजिक सुधार की उत्कृष्ट इच्छा एवं समाज में परिवर्तन तथा सुधार हेतु आंदोलन का जन्म ब्रिटिश शासन के दौरान कुलीन वर्गों में शिक्षा के प्रसार तथा पश्चिमी उदारवादी विचारधारा, तर्क एवं आधुनिक विज्ञान में आस्था, अंधविश्वासों एवं अनुष्ठानों पर प्रश्न चिन्ह, नागरिक समानता एवं प्रजातंत्री प्रक्रियाओं की अवधारणाओं का उदय, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ईसाई पादरियों द्वारा निम्न जातियों में जागृत उत्पन्न करना तथा अंततः मानव अधिकारों की राष्ट्र घोषणा के परिणाम स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन सर्वथम शिक्षा के प्रसार, विशेषतः महिलाओं के लिए आरंभ हुए। राजा राम मोहन राय 1772 से 1838, ज्योतिबा फूले 1828 से 1890, M.D. रानाडे 1842 से 1901, D.K. कार्वे 1858 से 1962 हिंदू महिलाओं में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, जबकि सर सैयद अहमद खां तथा बाद में अन्य अनेक डॉक्टर जाकिर हुसैन सहित ने मुसलमानों में इस आंदोलन की अगुवाई की। शिक्षा प्रचार के आंदोलन के साथ महिलाओं की दशाओं को सुधारने एवं उन्नत करने का आंदोलन भी चला। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया प्रथम सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके बाद विवाह एवं परिवार की संस्था में सुधार हुए। सुधारकों ने यद्यपि प्रेस एवं भाषणों के माध्यम से जन शिक्षा हेतु आंदोलन चलाए, तदपि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार से वैधानिक क्रिया करने की प्रार्थना भी की। तदनुसार सरकार ने अनेक कानून, बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी समाप्त करने एवं हाल ही में द्विपत्नी पर प्रतिबंध, माता पिता एवं सास ससुर की संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देना, दहेज प्रथा उन्मूलन, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान वेतन आदि संबंधी पास किए। अमानवीय जाति के विरुद्ध सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं अन्य धार्मिक समितियों द्वारा आरंभ किए गए, परंतु अस्पृश्यता से लड़ने वाले सबसे बड़े सैनिक महात्मा गांधी थे। इन्होंने हरिजनों को भगवान का पुत्र कहा तथा असहयोग एवं सत्याग्रह की नवीन विधियों द्वारा उनको सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने भारतीय संविधान में इन व्यक्तियों को भूतकाल में उनके प्रति किए गए अत्याचारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति रूप में अनेक सुविधाएं दिलवाई। यह बात भिन्न है कि अस्पृश्यता को कानूनी तौर पर समाप्त करने के बावजूद हरिजनों के प्रति अत्याचार अब भी हो रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलन को धक्का लगा, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि शक्तिशाली एवं संयुक्त राजनीतिक मंच तैयार करने में सामाजिक सुधार के मामले पर बल देना अविवेकी होगा। सामाजिक सुधार एवं राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलनों के मध्य समन्वय लाने का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया। उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिक पुनर्जागरण हेतु जन आंदोलन न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण कटिबद्धता के बिना संभव नहीं है। पृष्ठ 17। स्वतंत्र भारत में समाज सुधार आंदोलन नवीन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में प्रयत्नशील है। इन समस्याओं का कारण है जनसंख्या विस्फोट, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, वैज्ञानिक एवं शिल्प विज्ञानी प्रगति, पुरातन सामाजिक मूल्यों का ह्रास, पीढ़ियों का फासला, संयुक्त परिवार का विघटन, बेरोजगारी, निर्धनता, सांप्रदायिकता, कट्टरवादिता, आरक्षण, नीतियां, नशेपन, आत्महत्या आदि को जन्म देने वाली निराशाएं। समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख तत्व हैं उनका स्वैच्छिक स्वरूप, अहिंसात्मक साधनों द्वारा जन शिक्षा एवं प्रभाव, धीमी गति एवं वैधानिक अधिनियम की दलील। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कानून पर आधारित सुधार प्रक्रिया बहुधा अप्रभावी हो जाती है, क्योंकि लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन के बिना कानून में परिवर्तन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, कबीलों के बारे में अधिकांश कानून प्रभावी नहीं हो सके हैं तथा समाज के इन वर्गों के विरुद्ध की जाने वाली कुरीतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। यह जानना रुचिकर होगा कि उग्रवादियों, जो हिंसा में विश्वास करते हैं, ने समाज सुधार को अपनी गतिविधियों की कार्यसूची में सम्मिलित किया है। वे नशीले पेयों, धूम्रपान, विवाह पार्टियों में अधिक संख्या में आमंत्रितों का भाग लेना, विवाह में फिजूल खर्च, दहेज प्रथा, स्त्रियों द्वारा भड़कीली पोशाकें पहनना आदि के विरुद्ध हैं, और इस बारे में उनके आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वे कठोर कार्यवाही करते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाज सुधार समाज कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। वस्तुतः समाज सुधार कल्याण की आधारशिला है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में अधिकांश सामाजिक विधान एवं समाज कल्याण सामाजिक क्रियाशीलता के उन क्षेत्रों से मुख्यतः संबंधित हैं जो समाज सुधारों का रण स्थल बने तथा समाज कल्याण सेवाओं का आधार प्रदान किया।